दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज जुमेरात है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नखमाए सहर और बस्मे दीवान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो आइए समाप्त फरमाइए।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका 12वां बाब 28 से 34 आया तक। एक दिन फकीरों में से एक ने यीशु के पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इसराइल कि खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है, बस तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और दूसरा ये कि तू अपने हमसाये को अपनी माने प्यार कर, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकीर ने उनसे कहा, क्या खूब है उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और के उसके सिवा और कोई नहीं, और के उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाये को अपनी माने प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों और जबीहों से अफसर है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अकलमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं, और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फकीरों में से एक इस बात से बहुत मुतासिर हुआ कि खुदावन ने अपने नुक्ताचीनियों के सवालों के जवाब बड़ी चाबक दस्ती से दिए। अब खुद उस फकीर ने पूछा कि सब हुक्मों से अव्वल कौन सा है, यानी सबसे अहम हुक्म कौन सा है। बहुत खरा सवाल था, जो कई लिहाज से जिंदगी का बुनियादी सवाल है। दरअसल वो पूछ रहा था कि मुझे मुख्तसरन बताया जाए कि इंसान के वजूद का बड़ा मकसद क्या है। जवाब में यीशु ने यानी यहूदियों के इकरारुल ईमान से इक्तबास पेश किया कि ऐ इसराइल, सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। खुदावन मसीह ने खुदा के लिए इंसान के हकूक का खुलासा पेश किया कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जरूर है कि इंसान अपनी जिंदगी में खुदा को आला तरीन और फायक तरीन मकाम दे, कोई और मोहब्बत खुदा की मोहब्बत की रकीब न हो। बाकी अहकाम हमें ये तालीम देते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हमें खुदा से अपने से बढ़कर मोहब्बत रखनी चाहिए और अपने पड़ोसी से अपनी माने। चुनाचे वो जिंदगी जो वाकई अहमियत रखती है, इसका ताल्लुक पहले खुदा के साथ है, बाद में दूसरों के साथ। यहाँ मादी चीजों का जिक्र नहीं किया गया। अहमियत है तो खुदा को और इंसानों को। उस फकीर ने खुदावन से पूरा पूरा इत्तफाक किया और काबिल तारीफ वजाहत के साथ कहा कि खुदा और हम जिन्स इंसानों के साथ मोहब्बत रखना रीतो रस्म पर अमल करने की निस्बत नहायत अहम है। उसको एहसास हो गया कि लोग मजहबी रसूम भी अदा करते हैं और लोगों को दिखाने की गर्ज से खुदा परस्ती का ढोंग भी रचा लेते हैं, लेकिन बातनी और शख्सी पाकीज़गी नहीं रखते। उसने ये भी तस्लीम किया कि खुदा इंसान के जाहिर और बातिन दोनों को परखता है। जब यसु ने ये काबिले तारीफ बात सुनी तो उस फकीर से कहा कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। बादशाही की सच्ची रियाया जाहरी मजहब से खुदा को या अपने हम जिन इंसानों को या अपने आप को धोखा नहीं देती। वो जानते हैं कि खुदा दिलों पर नजर करता है, इसलिए वो गुनाह से सफाई के लिए और उसकी मर्जी और खुशी के मुताबिक जिंदगी बसर करने की ताकत हासिल करने के लिए खुदा की तरफ रजू करते हैं। इसके बाद किसी ने जुर्रत ना की कि इस तरह के उल्टे सीधे सवालों से उसे फंसाए।
आदाब और सामिन, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। दोस्तों, हैं आपके मेजबान इरम इमरान और मेरे साथ मौजूद हैं अंकल दीवान। पेशे खिदमत है आपका अपना और पसंदीदा प्रोग्राम बस्मे दीवान।
सुनाइए सामिन, कैसे हाल अहवाल हैं आपके भाई? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे और हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होंगे।
जी हाँ दोस्तों, दोस्त हमेशा याद रखे कि जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मरहले पेश आते हैं, जिनमें से कुछ तो खुशगवार होते हैं और कुछ नाखुशगवार होते हैं, लेकिन हमें बहर तो और तमाम मराहल का सामना तो करना ही पड़ता है। ये भी हकीकत है कि जिंदगी में आने वाली कुछ मुश्किलात का सबब कभी कभार हमारे फैसले भी हो जाते हैं, इसलिए जिंदगी में जब भी कोई अहम फैसला करने लगे तो बहुत सोचो विचार के बाद इस फैसले को माया तकमील तक पहुँचाएं।
बिल्कुल सही बात है, और कई दफा परेशानी जो है ना इंसान को जो है ना मतलब बहुत मजबूर भी कर देती है, और कई बार परेशानी अपनी हमाकतों की वजह से भी आ जाती है।
जी अंकल, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे अक्सर बेशतर आप पर परेशानी जो है हमाकतों की वजह से ही आती है।
बस यही हमाकते मुझे लेके बैठ गई, और मैं वही बताने लगा था कि अभी हो गया कुछ 3-4 हफ्ते हो गए, मैं कहीं गया हुआ था, ट्रेन पे सफर कर रहा था। ओहो, बस फिर क्या मतलब, ट्रेन पे बैठ तो मैं गया, लंबा सफर था।
अच्छा,
वो टीटी आया मेरे पास, कहता जी टिकट दिखाओ जी। और मैंने कहा अच्छा, मैं टिकट दिखाया, ये जेब में हाथ मार, इस जेब में हाथ मार, सर्दियां भी ज्यादा थी और सर्दियों में इंसान की जेबें भी ज्यादा होती है ना।
अच्छा,
बस टिकट ने मिलने का नाम ही नहीं लिया भाई, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, टिकट ही नहीं मिला।
अच्छा, फिर
खैर वो अच्छा आदमी था टीटी जो है ना मेरा, पता नहीं किसी वजह से मुझे जानता था, कहता है दीवान साहब मुझे पता है मैं आपको पहचानता हूँ और मुझे पता है आपने जरूर टिकट लिया होगा, टेंशन न लें, कोई मसला नहीं, आप बैठे आराम से, आपको कुछ नहीं कहते।
अच्छा,
और मुझे टेंशन लगी, मैंने कहा यार टीटी भाई तू तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैंने इतना लंबा सफर करना है और अगर टिकट ना मिला तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उतरना किधर है।
हाँ,
कैसे
अंकल ये आप कैसी बातें करते हैं?
और जाहिर सी बात है भाई, भुल भुलेखे कई दफा काम हो जाते हैं ना, कई दफा अजीब अजीब हमाकते होती है, और ये वो कहते हैं नैले पे दैला एक से बढ़कर एक होता है। वो होटल में कोई खातून बैठी हुई थी ना, उसने वेटर का नाक में दम किया हुआ था भाई।
अच्छा
भाई, एक दफा उसको बुलाती है, कहती है इधर आओ वेटर, एसी बंद कर दो।
अच्छा,
5 मिनट बाद फिर बुला लिया, कहती है वेटर इधर आओ, एसी चला दो।
अच्छा,
6-7 दफा ऐसे मतलब उसने किया। वो पास बैठा हुआ एक बंदा परेशान दूसरी टेबल पे हो गया, उसने वेटर को बुलाया, उसने कहता है यार ये बीबी तुझे ऐसे ही तंग करती जा रही है, तू इसको मतलब करारा सा जवाब क्यों नहीं देता।
अच्छा,
वो कहता है जी हाथ सुटो। उस कहते हैं क्यों हाथ क्यों सुटो? कहते हैं हमारे होटल में एसी है ही नहीं। कैसे
आगे, ये तो बहुत ही बुरी हमाकत है। तो फिर वो औरत किसको देखकर एसी समझ रही थी?
अब बस पता नहीं, उधर उन्होंने कोई टीन कबाड़ रखा होगा जिसको वो बेचारी एसी समझ रही होगी, या फिर कई दफा होता है ना कि हम मतलब जब जाते हैं किसी होटल में जाते हैं तो हम अक्सर हमारे जो मतलब हम दरमियाने तबके के लोग हैं जी, मतलब जाहिर सी बात है होटल में कभी कभी जाने का इत्तेफाक होता है।
हाँ।
तो ऐसी बिना वजह वेटरों को अपनी मतलब इमारत जताने के लिए ना अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। कई दफा ऐसी मतलब वो कह रहे होते हैं वेटर इधर आओ, ग्लोव्स वॉश करके लाओ। وہ بندے خدا کے پہلے کہنا تو سیکھ لو، اس کے بعد اس کو حکم دینا. اور ہاں جی، اور ویٹر بھی دوسرے پاسے جا کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بندہ ہے یار. ہاں جی، وہ عجیب عجیب قسم کی حماقتیں ہوتی ہیں. ہاں جی، لیکن بس یہی ہے نا، ایک بندہ حماقت میں بیٹھ گیا نا ٹرین پہ.
اچھا،
ٹرین پہ بیٹھ گیا تو اس کے بعد وہ خانے وال رک دی ہے کراچی. اچھا، جب جا رہی ہو.
بالکل بالکل.
خانے وال اتر ہے تو اتر کے وہ چائے پینے لگا تو اس نے پہلی باری ٹرین پہ بیٹھا ہوا تھا.
اچھا.
ہاں جی، اس نے جو ہے نا مطلب وہ دیکھا کہ جس دروازے کے آگے وہ درخت لگا ہوا ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ.
اچھا.
اس نے کہا یہی دروازہ میرا، چائے پی کے میں نے اس میں بیٹھ جانا.
اچھا.
وہ سرکار چائے پینے لگا، ادھر لگی ہوئی تھی موڑا جاٹ کی فلم.
اچھا.
اوے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مارتا. ہیں جی، ایسے ڈائلگ چل رہے تھے. وہ مگن ہو گیا، فلم دیکھنا شروع ہو گیا. وہ ٹرین نکل گئی. دوجی ادھر کراچی سے لاہور آنے والی ٹرین ادھر آگے کھڑی ہو گئی.
اچھا.
اب اس نے وہی نشانی رکھی ہوئی تھی کہ درخت والے جو دروازہ ہے اس میں میں نے گھسنا ہے.
اچھا.
وہ جی بس ایک دم اس کو خیال آیا، اوہو میں تو جا رہا تھا. فوراً سرکار وہ درخت والے دروازے سے گھسا، اندر جا کے بیٹھ گیا، اپنی برتھ پہ جا کے لیٹ گیا.
اچھا.
تھوڑی کو دور اگے مطلب آیا نا تو ٹرین چل پڑی، اس نے نیچے دیکھا، کہتا ہے سواریاں بدلی بدلی لگ رہی ہیں یار.
اچھا.
نیچے والے بندے کو آواز دے کے کہتا ہے بھائی جی تسی کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی میں لاہور جا رہا ہوں.
اچھا.
کہتا ہے دیکھ لو جی کیسی سائنس نے ترقی کر لی ہے، ایک ہی ٹرین میں تھلے والی سواریاں لاہور جا رہی ہیں، اتنے والی سواریاں کراچی جا رہی ہیں، کیسے؟
واقعی انکل یہ تو ذہانت کی انتہا ہو گئی نا پھر تو.
بس ایسی ایسی بڑی بڑی ذہانتیں لوگ دکھاتے ہیں.
ویسے انکل، آپ کی جو اس طرح کی کھٹی میٹھی سی چلبلی سی باتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں یا ویسے ہی پیار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بے وقوفیاں جو ہیں ہمارے دوستوں میں بہت ہی زیادہ مقبول ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دوست جو ہیں وہ آپ کے دیوانے ہو رہے ہیں.
ہاں جی بالکل، یقین جانو میں تو مطلب میں نے کبھی غرور کیا ہی نہیں. ایک دفعہ میں کہہ بیٹھا تھا تو میرے ایک سامے دوست نے کہہ دیا کہ انکل یہ کوئی اتنے غرور والی بات ہے بھی نہیں، اپنے ذرا جو ہے نا کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملو. اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ ہمارے سامعین کے لیے ہم یہ محفل سجاتے ہیں نا جی. ہیں جی، تو ہمارے سامعین خوش ہوتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے. اور کسی طرح ایک دفعہ کہہ دیا تھا جی ہمارے پروگرام کا جو موضوع جو ہے وہ مطلب کوئی موضوع نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. اور میں نے کہا یار اس سے بڑا موضوع اور کیا ہوگا کہ کوئی 15-20 منٹ جو ہے ہمیں ہنسنے کھیلنے کے لیے مل جاتے ہیں آج کے اس دور میں.
صحیح بات،
بڑی بات ہے.
صحیح، بالکل کہہ رہے. لیکن انکل، جہاں پر موضوع کی بات آتی ہے تو ہم ضرور ایسے جو ہے وہ ہنسی مذاق میں نہیں وقت گزارتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی ہم اپنے دوستوں کو کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ بتا دیں جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکے.
ہاں جی بالکل، اور زندگی میں تبدیلی لانی بہت ضروری ہوتی ہے. ہاں جی، اور مثبت تبدیلی ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اور ریڈیو ویریتاس ایشیا اردو سروس کا تو ہمیشہ پیغام ہی یہ ہے نا کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگیوں میں اعلیٰ اقدار کو جو ہے وہ جگہ دے. اور اس سال کا موضوع بھی بڑا زبردست ہے. جی ہم آگے تقاضا ہے وقت.
جی ہاں انکل، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ مل کر ہر سال کی طرح جو ہے اس موضوع کو بھی فروغ ضرور دیں گے.
ہاں جی بالکل، اور ویسے بھی یہ ہنسی مذاق میں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے نا مطلب بتانے کا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک بھی بات کو اگر مطلب اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں.
بالکل انکل، اور مثبت تبدیلی لانے کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے ایک اچھا سلوشن جسے کہہ دیں، ایک اچھا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں انکل کہ اگر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف رکھتے ہیں، اور خاص طور پر کھیل کود میں بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا لیتے ہیں، تو ایسے سے ہم بہت زیادہ بیماریوں سے اور خاص طور پر معاشرتی بیماریوں سے بچ سکیں گے.
ہاں جی بالکل، معاشرتی بیماریوں سے اور بہت ساری ایسی مطلب جو باتیں ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اور یہ کھیل کود، خیر پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ پڑھو لے گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. لیکن اب آہستہ آہستہ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کھیلنا کودنا بھی زندگی کا جو ہے نا ایک حصہ ہے.
بالکل، اور غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں اس میں حصہ لینے سے ہمارے ذہنی وسعت جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے. خیر دوستو، اس حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر پروگرام میں وقت بچ رہا تھا ایک چھوٹے سے وقفے کا. کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
ریڈیو
सामिन, ये रेडियो वरिता से शेखी उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बस में दीवान। सामिन, वक्फे के बाद तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। और जी, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कुछ खेल कूद के बारे में कि खेल कूद से हमारी जहां पर जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफा होता है, वहां पर हमारे जहनी सलाहियतों को भी वसत मिलती है।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात कही है। आगे कहें जी।
अंकल, तो जब मैं कह रही थी तो आपने मुझे टोका क्यों?
और नहीं नहीं, बीच में अगर बंदा कोई बोले ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में, अंगूरा ना दे तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये सो रहा है, मेरी बात सुन रहा है कि पता नहीं नहीं सुन रहा है। इसलिए मैंने कहा कि चलो बीच में मुझे थोड़ा सा कर देना चाहिए।
तो लेकिन अंकल, किसी की बात काटना भी तो सही बात नहीं है।
हाँ जी, वैसे ये भी बात सही है। और मैं खैर, चलो ठीक है, अब जो हो गया हो गया, बोले आगे बोले।
अच्छा अंकल, खेल और खिलाड़ियों के हवाले से हम बात करते हैं अभी तो। हाँ अंकल, वर्ल्ड कप की आमद आमद है, बड़ा चर्चा है, आपकी तैयारियां कैसी हैं?
हाँ जी बिल्कुल, मुझे उसने फोन किया था कि अंकल दीवान, मैंने जुमेरात की शाम तुम्हारी तरफ आना है, जरा खाना खाना। अच्छा, किधर आमद आमद है, ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं डीएसपी साहब आ रहे हैं।
अरे अंकल, वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप है और इसने तो सारी दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर रखा है। आपको पता है जब ये वर्ल्ड कप चार सालों के बाद आता है तो कारोबार का हालात का जो हाल अहवाल होता है कितना मंदा पड़ जाता है।
हाँ जी मुझे पता है। और जो तुमने बात कही है ना, ये ग्रामर की जो गलतियां होती हैं इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं। वर्ल्ड कप आ नहीं रहा,
आ रही
बल्कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऐसे कहो तो। और ये रेडियो जो होता है ना, इस पे तो ये हमारे जो आवाज के असरात होते, पहले जो बात मैंने कही थी ना, यही सारा नतीजा निकालते है ना। वो पहले दौर में होता था ना कि मतलब ये एडिटिंग बड़ी मुश्किल काम होता था, कंप्यूटर नहीं होते थे तो कई दफा गलत चीजें भी लग जाती थी।
अच्छा।
और कई दफा लाइव प्रोग्राम होते थे, उसमें मतलब वो देने पड़ते थे व्यक्ति जो है ना, तो ऐसे ही मतलब टीवी रेडियो पे ड्रामा चल रहा था ना कि वो मतलब उसने कहता है कि सेठ अपनी तिजोरी की चाबी दे दो वरना पिस्तौल मेरे हाथ में है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
अच्छा।
उसने कहा, सेठ आगे से जवाब देता है, ठीक है फिर मैं तिजोरी की चाबी नहीं दूंगा, तुम्हें तिजोरी तक मेरी लाज से गुजर के जाना पड़ेगा।
अच्छा।
वो सरकार, वो कहता है ठीक है फिर गोली का सामना करो।
अच्छा।
उसके बाद खामोशी छा गई, वो साउंड इफेक्ट ना दिया गया उस बंदे से।
अच्छा।
वो दो मिनट बाद ना उसने, अदाकार ने, वो जो सदाकार था उसने खुद ही सोचा कि नहीं यार यही इसको कवर करना चाहिए। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है सेठ कि आज मैं अपनी बंदूक कर भूल आया हूँ।
तो फिर आगे क्या हुआ अंकल?
फिर क्या होना था, मसला ये है कि सारी सी बात है, वो एक गलती हो गई।
नहीं तो अंकल, पहले तो
तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं बंदूक घर भूल आया हूँ, नहीं तो मैंने छह की छह गोलियां तुम्हारे सीने में उतार देनी थी।
अच्छा।
तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, ये चाकू भी है मेरे पास, लो अब चाकू का सामना करो। और जैसे ही उसने ये डायलॉग बोला, गोलियों की आवाज आना शुरू होगी। कैसे
अंकल,
तो ये जो है ना, ये बातें जो है ना हमारी, हमारे सामने पे असर करती है, इसलिए बातों का हमें अपने जोड़ों में बड़ा ग्रामर का ख्याल रखना पड़ता है।
सही बात है। ठीक है अंकल, आप मुझे यूं ही गाइड करते रहेंगे ना तो मेरी ग्रामर की गलतियां जो वो सब ठीक हो जाएंगी।
हाँ जी बिल्कुल। अच्छा चलो जी, अब ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, वर्ल्ड कप खेलने जा रही है हमारी टीम।
अच्छा।
और एक टीम तो उधर जा रही है ना।
हाँ।
अब घर घर में टीमें बनी हुई है, यकीन जानो। अद्धे कह रहे हैं फलाने ने जीतना है, अद्धे कह रहे हैं फलाने ने जीतना है। जो ये फतह और शिकस्त जो होती है ये तो खुदा की तरफ से होती है ना, और
खुदा की तरफ से होती है, लेकिन अंकल मेहनत तो इंसान को करनी होती है ना।
हाँ जी, जाहिर सी बात है भाई, मतलब मेहनत, लेकिन मुझे ये खेलों की आज तक समझ नहीं आई।
क्यों अंकल?
और बस मुझे नहीं पता चलता कि कौन से खेल में क्या होता है। एक दफा मुझे तो बड़ा बेइज्जत होना पड़ गया था।
क्यों अंकल?
वो बस वर्ल्ड कप हो रहा था, ऐसे क्रिकेट के वर्ल्ड कप हो रहा था, तो ऐसे मैंने डेंग मार दी। मैंने कहा वो जब फलाना मैच खेला जा रहा था ना तो मैं भी उधर ही था। उसने कहा तुम उधर थे, बताओ कोई उसका वाकया बताओ। मैंने कहा तुम्हें याद नहीं है जब सलीम मलक ने मतलब विकेटों के पीछे से निकल के छह गोल कर दिए थे। ओ बस फिर बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। नहीं मुझे खेलों का पता चलता है।
अंकल आप जानकारी रखे ना, आप क्यों नहीं रखते हैं?
हाँ बस रखनी है। इस दफा मैंने सोचा कि वर्ल्ड कप के दौरान मैंने कोई ऐसी गल नहीं करनी कि जिसकी वजह से मतलब लोगों के दरमियान जो है वो मतलब मेरी इंसल्ट फील हो।
ठीक है अंकल, सही बात है। और आप इधर उधर से मालूमात इकट्ठी कर लिया करें ना, यहाँ पर आया करें, दफ्तर से आपको बहुत मालूमात मिलेंगी।
हाँ जी, दफ्तर से क्या मालूमात मिलनी है, ये भी अजीब ही हो जाता है ना वो। हाँ। मतलब क्रिकेट तो है ही बाई चांस ना, है
क्यों
पता
अंकल?
नहीं चलता। एक दुकान से निकलो तो पता चलता है कि न्यूजीलैंड जी इधर है, दूसरी दुकान में घुसो तो पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया जो वो जी इधर है जी, पता ही नहीं चलता, एक मिनट में बाजी पलट जाती है इधर की उधर है जी। वो हमारे दौर में होता था फुटबॉल, वो सीने के जोर पे खेलना पड़ता था।
अच्छा
है जी, एक पोल से दूसरे पोल तक जब लेके जाना पड़ता था ना गेंद, तब पता चलता था। एक दफा उधर भी मुझे मतलब यकीन जानो उन्होंने टीम से धक्के दे के निकाल दिया, जवानी की बात है।
क्यों अंकल?
और बस गलती होगी, मैंने अपने गोल में ही छह गोल कर दिए।
क्या बात है अंकल। अच्छा क्रिकेट के बारे में कोई आपको मालूमात है?
हाँ क्रिकेट के बारे में बहुत मालूमात है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं
है। फिर अंकल कुछ
बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, वो मैराडोना भी क्रिकेट खेलता होता था ना?
अरे नहीं अंकल, वो तो फुटबॉल खेलता है।
ओहो फुटबॉल तो वो खेलता था ना इंटरनेशनल लेवल पे।
हाँ।
जब घर आता था ना मैच हार हूर के ये जीत के, तो घर में आके क्रिकेट ही खेला करता था। इतना नॉलेज है मुझे कि जो घर में क्रिकेट खेलते हैं उनका भी मुझे नॉलेज होता है, ऐसी कोई बात नहीं।
हामिद अंकल दीवान से इसी तरह से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और मजीद क्रिकेट के हवाले से इंकशाफात जो है वो आपको बताते जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मजा आइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। सामिन ये रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बस में दीवान जी। अंकल किसी और खिलाड़ी के बारे में बताएं अब जो क्रिकेट खेलता है घर पर।
ओहो नहीं, वैसे तो मैं भी क्रिकेट बहुत घर पे खेलता हूँ, ऐसी
अच्छा।
कौन सी बात है। और ये घर पे जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं ना, ये मुझे कभी कभी बहुत अच्छे नहीं लगते।
क्यों?
ये गलियों में क्रिकेट खेलने वाले ये कीड़े जानो घर का एक शीशा नहीं छोड़ते।
हाँ ये है बात है, लेकिन अंकल मसला ये है कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई ऐसा प्ले ग्राउंड भी तो नहीं मोहल्लों में बनाया जाता जिसमें वो जाकर इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियां जो सर अंजाम दे सके, कोई खेल कूद कर सके, कोई क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, कहीं पे ऐसा आपको कहीं मिलता है? हालांकि होना तो ये चाहिए कि हर कॉलोनी में एक प्ले ग्राउंड जो है वो जरूर रखा जाए।
हाँ जी बिल्कुल, और मतलब होना चाहिए। और फिर भी इसके बावजूद देखिए कि हमारे पास ये जो नेचुरल टैलेंट है, जो हमारा कुदरती टैलेंट है, वो कितना ज्यादा है कि इसके बावजूद ना हमारे पास अच्छी ग्राउंडे हैं, ना हमारे पास अच्छी कोई मौके मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी टीम जो है इंटरनेशनल सतह पे जो है बहुत अच्छा खेलती है, और कभी कभी थोड़ा सा माड़ा खेलती है, तो फिर उसके बाद जो है मतलब हमारे तेवर जो है बिल्कुल ही बदल जाते हैं। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट है ये खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, इसको जाती अड़ा का मसला नहीं बना लेते।
बिल्कुल अंकल, और ये रवैया जो है वो बहुत ही बुरा होता है। देखिए एक टीम जो हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान की ऐसे सरपरस्ती करते हुए खेल रही है और वो पूरे पाकिस्तान की शान आन बान अपने कंधों पर जो है उठाए फिर रहे हैं, अच्छा खेले तो उनकी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए, ये उनका हक है। लेकिन अगर कहीं पे कुछ खराबी हो जाती है तो हमें उनको इस तरह से बुरे अल्फाज के साथ नहीं नवाजना चाहिए, बल्कि तब भी उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो और ज्यादा मेहनत करें।
हाँ जी बिल्कुल, हौसला अफजाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना इसमें मौजूद ये पूरे निजाम में मौजूद जो खामियों को जो है ना वो हाईलाइट करना चाहिए। और आजकल मतलब हमारा मीडिया इस मामले में बहुत पेश पेश होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल।
और कई दफा तो इतना पेश पेश होता है कि जेर जबर लगाना ही भूल जाता है। हाँ जी मतलब वजह ये होती है कि आप तनकीद कर रहे होते हैं, सवेरे तनकीद कर रहे होते हैं ये मोहम्मद जुबैर को इन्होंने खिला लिया है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका जो है मतलब कैसे इसको मतलब इन्होंने रख लिया टीम में, इसकी ना टेक्निक अच्छी है, ना इसमें स्टेमिना है, और ना ही ये अच्छा खेल सकता है। और रात को जब वो सेंचुरी मार चुका होता है ना, फिर उनके बिल्कुल ही नहीं जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि मोहम्मद जुबैर जो है बहुत अच्छा खेलेगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और ये जो है हमें इसमें मुस्तकबिल का जो है ना वो मतलब जवेद मियादाद नजर आ रहा है या मतलब जहीर अब्बास नजर आ रहा है, एकदम से जो है ना कांटा बदल लेते हैं।
सही बात है, लेकिन अंकल हमारी तो दुआएं और नेक तमन्नाएं हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं कि वो जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएं।
हाँ जी बिल्कुल, और मैं तो सवेरे शाम पाकिस्तान का नाम रोशन करता हूँ।
वो कैसे अंकल?
वो घर में जो सामने तस्वीर लगी हुई है ना, उस पर बड़ा सारा पाकिस्तान लिखा होता है।
हाँ।
उसके बिल्कुल मथे पे जो है ना बल्ब लगा हुआ है, मैं सवेरे शाम बल्ब ऑन करता हूँ।
अंकल ऐसे थोड़ी ना नाम रोशन होंगे पाकिस्तान के।
नहीं मैं बिल्कुल सही बात है, ये तो चले मजाक की बात है, लेकिन हमारे खिलाड़ी हमारे सपूत जो है वो किसी से कम नहीं है। और मुझे पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पहले भी हमने तुम्हें पता है कि 92 में वर्ल्ड कप उधर ही जीता था।
बिल्कुल अंकल, बिल्कुल याद है मुझे।
हाँ जी बिल्कुल, तुम भी उस वक्त कोई बच्ची तो नहीं होनी, मतलब काफी तुम्हारी भी उम्र होगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
ठीक है अंकल जी, अंकल मैंने देखा था।
हाँ जी, तो मैं तो खैर मैंने तो वर्ल्ड कप सारा देखा, ये अलग बात है कि उस वक्त अंकल हाँ। दीवान के पास जो है ना घर में टीवी नहीं होता था।
अंकल इतनी भी पुरानी बात नहीं है ये।
ओहो, तो अंकल दीवान टीवी की पुरानी बात नहीं है, अंकल दीवान के लिए तो है ना।
अच्छा ठीक है, तो अंकल आप मोहल्ले में जाके देखा करते थे?
मोहल्ले में कहा, कहीं किसी होटल पे जाके देख लिया करते थे, पीछे खड़े होके। दो मिनट बाद वेटर ने आना, हाँ जी भाजी क्या चाहिए? उसको कहना, अच्छा चलो चलो यार अभी जाओ, मैं थोड़ी देर बाद ऑर्डर करता हूँ। बस ऑर्डर करने करने में आधा मैच देख लेना, आधा मैच दूसरी होटल पे जाके देख लेना। हमारे पाकिस्तानी इस मामले में बड़े शातर होते हैं।
बिल्कुल,
बाहर एक मुल्क में ना उन्होंने एक सिस्टम लगाया, ये हम करवाते हैं ना, ये मोची मोची बैठे होते हैं, जुतियां पॉलिश करवा लेते हैं।
बिल्कुल,
लेकिन उधर जो है ना कंप्यूटराइज्ड हो गई हर शय।
अच्छा,
उन्होंने ना उधर मशीनें लगा दी हुई है।
अच्छा
है जी, कि जब आपने जूती पॉलिश करानी हो ना, हम हाँ। मशीन पे पहले उसके ऊपर एक पाँव रखें,
अच्छा
वो जूती पॉलिश हो जाती है।
अच्छा,
फिर दूसरा पाँव रखेंगे वो भी पॉलिश हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही आपके पाँव को जो है ना
हाँ।
एक छोटा सा वो शिकंजा सा पड़ जाएगा।
क्यों अंकल?
वो जाहिर सी बात है, आपने पेमेंट जो करनी है, जब आप उसमें सिक्का डालेंगे
हाँ।
तो वो पाँव खुल जाएगा, पेमेंट भी हो जाएगी, आपकी जूती भी पॉलिश हो जाएगी।
सही, सही,
लेकिन हमारे पाकिस्तानी इतने शातिर है, एक बंदा चला गया, कहता देख मैं इनके कंप्यूटर को कैसे चक्कर देता हूँ।
अच्छा,
मैंने कहा चल दे के बखा
हाँ।
बस कोई नहीं, बड़ी सादगी से उसने एक पाँव इस चौक से पॉलिश करवा लिया, दूसरा अगले चौक से करवा लिया। कैसे
अंकल जहानत नहीं तो ये बात, बहुत ही शातिर दिमाग था वो आपका, दो जो भी था। खैर, अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, तो हम अपने दोस्तों को यही पैगाम देंगे, दुआ करें आप, मेहनत हमारे जो है पाक वतन के खिलाड़ी करेंगे, और जो दुआगो हैं कि इस सीजन में भी, इस साल में भी हमारे लिए, हमारे जो दोस्त खिलाड़ी हैं, हमारे जो हमारी जो कौमी टीम है, ये जाकर वर्ल्ड कप जैसी खुशियां जो है वो लेकर आए। और अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि अगर हम खुदा करे कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं, तो ढेरों दुआओं और खुशियों के साथ अपने साथियों को, हमारे कौमी हीरोज को जरूर नवाजिएगा। और
जी बिल्कुल, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है हम जीतेंगे, और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पाकिस्तान का जो परचम है वो सर बुलंद हो।
आमीन। और दोस्त, इन्हीं दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इरम इमरान और अंकल दीवान को आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए।
पैगंबर रेडियो एशिया।